मन्नू भंडारी का महाभोज दलित प्रसंग। मन्नू भंडारी का उपन्यास महाभोज 1979 में प्रकाशित हुआ था। उस समय 1977 में आपात स्थिति हटने के बाद हुए चुनावों में जनता पार्टी अस्तित्व में आई थी। पूरे देश में पहली बार गैर कांग्रेस पार्टियों का वर्चस्व बना था। बिहार में भी जनता पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन दूसरी आज़ादी कही गई इस शासन व्यवस्था में बड़े पैमाने पर हरिजनों या दलितों के नरसंहार हुए थे, विशेषतः बिहार में। आपात स्थिति की ज्यादतियों से बदनाम हुई श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस समय बिहार में इन क्षेत्रों में हाथी पर बैठकर बहुप्रचारित यात्राएं की थी। वह कुल मिलाकर यह स्पष्ट हो रहा था कि कांग्रेस पार्टी हो या जनता पार्टी, दोनों ही पार्टियाँ बड़े जमींदार व पूंजीपति हितों की संरक्षक पार्टियाँ हैं, और दलितों या हरिजनों या गरीब किसान मजदूरों का ये पार्टियां खाली वोट या वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती हैं। और दोनों ही पार्टियां या उसके बाद अब तक अन्य अनेक पार्टियों की शासन व्यवस्था में भी दलितों गरीबों का इस्तेमाल केवल सत्ता के सीढ़ी तक पहुंचने के रूप में होता है, और सत्ता का सुख व सत्ता की दिशा बड़े जमींदार पूंजीपति व अब तो अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के हितों के संरक्षण की ओर रहती है। एक इंच मुस्कान की सहलेखिका व आपका बंटी जैसे संवेदनशील उपन्यास की लेखिका मन्नू भंडारी न तो अपने जीवन व्यवहार में व न ही लेखन में कोई विशेष राजनीतिक रुचि रखती हैं, लेकिन शासन व्यवस्था के इस दोहरे चरित्र ने उन जैसी मानवीय संवेदना रखने वाली लेखिका को सृजनात्मक रूप से विचलित किया, और उन्होंने इस गहरी मानवीय संवेदना से महाभोज जैसे उपन्यास की रचना की, जो प्रकाशित होते ही चर्चा के केंद्र में आ गया और इसे एक सशक्त राजनीतिक उपन्यास भी माना जाने लगा। इसकी प्रभावशाली कथा वस्तु में नाटकीयता के पर्याप्त तत्व होने के कारण इसका नाट्य रूपांतर भी हुआ व राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से इसकी प्रभावशाली नाट्य प्रस्तुतियां भी हुई। इस उपन्यास के छपने के अरसे बाद बनी गोविंद निहलानी की फिल्म पार्टी पर कम से कम महाभोज का प्रेरणादायी प्रभाव तो देखा ही जा सकता है। हालांकि पार्टी इस उपन्यास पर आधारित फिल्म नहीं कही जा सकती। महाभोज भारतीय समाज के सर्वाधिक उपेक्षित व उत्पीड़ित वर्ग दलितों के उत्पीड़न के संदर्भ में सत्ताहीन राजनीतिक दलों की शतरंजी चालों की कहानी के यथार्थ को प्रस्तुत करने वाली औपन्यासिक रचना है। इस उपन्यास के कथ्य के केंद्र में दलित जीवन का यथार्थ, उसका शोषण, उत्पीड़न आदि प्रत्यक्ष रूप में तो नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप में भी जो दलित जीवन का संदर्भ है उससे दलित जीवन की वास्तविकताएँ काफी हद तक खुलकर सामने आती हैं। उपन्यास के आरंभ में लेखिका का संक्षिप्त कथन व उपन्यास का उनका समर्पण दोनों ही एक ईमानदार लेखक के सामाजिक सरोकार को लेखकीय जिम्मेदारी के रूप में प्रस्तुत करने वाले शब्द हैं। लेखिका के समर्पण शब्द हैं, दुर्निवार सम्मोहन भरी या खतरनाक लपकती अग्नि लीक के लिए जो बीसु और बिंदा तक ही नहीं रुकी रहती। यह अग्नि लीक है मानवीय सम्मान व आत्मसम्मान की, इसकी रक्षा करने के लिए विशु को अपनी जान देनी पड़ती है और बिंदा को एक खतरनाक राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार होना पड़ता है। उपन्यास की भूमिका रूप में संक्षिप्त कथ्य में लेखिका ने प्रश्न उठाए हैं। ये प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं, विशेषतः लेखिका का यह प्रश्न, जब घर में आग लगी हो तो सिर्फ अपने अंतर जगत में ही रहना या उसी का प्रकाशन करना क्या खुद ही अप्रासंगिक, हास्यास्पद और किसी हद तक अश्लील नहीं लगने लगता? भारतीय समाज में छठे दशक के अंत और सातवें दशक के आरंभ से जो सामाजिक हलचल शुरू हुई है उसका शमन तो दूर की बात, यह हलचल अभी आक्रामक और हिंसक तो कभी शांतिपूर्ण जनप्रतिरोध के रूप में लगातार अभिव्यक्त हो रही है। कभी वह सामाजिक हलचल वर्ग संघर्ष का सीधा रूप इख्तियार करती है तो कभी जाति या मंडलवाद के रूप में जाति संघर्ष में छिपे प्रच्छन्न वर्ग संघर्ष का रूप लेती है। वैसे तो समाज के किसी भी संघर्ष की तह में वर्ग संघर्ष के बीच रहते ही है, इसीलिए मंडल आयोग या जातिवाद के दायरे में भी वर्ग संघर्ष की छायाएं तो देखी जा सकती हैं। आखिर पिछड़ी या दबी कुचली जातियां सामाजिक व्यवस्था में जो थोड़ा बहुत हिस्सा मांग रही हैं या अपनी जगह सत्ता केंद्रों में बना रही हैं, तो ये जातियां कोई बड़ी जमींदार या बड़े पूंजीपति वर्ग से संबंधित जातियां तो नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पिछड़ी जातियां यादव आदि मध्यवर्गीय सफ़ेदपोश नौकरी पेशा वर्ग, जिनमें ब्यूरोक्रेट, डॉक्टर, इंजीनियर आदि शामिल हैं, की तर्ज पर सत्ता में कई जगह पदासीन हो गई हैं और सत्ता में मिले अपने हिस्से को वे छोड़ना नहीं चाहते, जिसके कारण उन पर भ्रष्टाचार, जातिवाद और अनेक तरह के आरोप आदि वर्चस्ववादी मीडिया द्वारा लगाए जाते हैं। हालांकि भ्रष्टाचार या जातिवाद तो अंग्रेजों के ज़माने से या उससे भी पहले से चला आ रहा है और तथाकथित उच्च जातियों पर ऐसे आरोप ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा गंभीरता से लगते रहे हैं। यहाँ तक कि कई बार तो ये आरोप प्रामाणिक भी होते रहे हैं, तब भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती रही, क्योंकि वे शासक वर्गों व उच्च जातियों का प्रभावशाली अंग है। लेकिन हाल के वर्षों में जब पिछड़ी जातियों ने अपेक्षाकृत निम्न आर्थिक स्थिति से उठकर सत्ता में भागीदारी की है, तो वर्चस्ववादी जातिवादी सत्ता व मीडिया उन्हें पचा नहीं पा रहा है और कुछ चुने हुए नेताओं पर निशाना साध रहा है, जो उनके लिए असुविधाजनक है। लेकिन मनु भंडारी ने जिन अमानवीय होती सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों का अंकन महाभोज में किया है, वे परिस्थितियाँ 20 साल बाद कहीं और बदतर हुई हैं। मनु भंडारी के महाभोज में जिस एक घटना से पूरा उपन्यास बुना गया है, वह घटना तो अब बदले परिवेश में घटना बनती भी नहीं है और इस तरह की हत्याएं एक बहुत सामान्य सी बात बनकर रह गई है। सामूहिक हत्याकांड अब कहीं बड़े पैमाने पर होते हैं, सिवाय इसके कि इस बीच टेलीविजन नेटवर्क इतना बढ़ गया है और इस तरह के हत्याकांडों की आंखों देखी खबरें कैमरे में बंद कर दर्शकों को एकाध दिन में अपनी पूरी भयावहता में परोस दी जाती है। लेकिन टेलीविजन के अनेक चैनलों द्वारा प्रदर्शित ही हत्याकांड या अन्य अमानवीय समाचार अब देश में 1979-80 जितनी संवेदना या सरोकार भी पैदा नहीं करते, जबकि 77-78 में अखबारों में छपने मात्र से देश भर में कुछ प्रतिक्रिया हो जाती थी। यह बात अलग है कि 2400 घंटे टेलीविजन चैनल इस तरह की सामग्री, फैशन शो, अश्लील नृत्य, विश्व सुंदरी प्रतियोगिताएं, वाच शो, नाच गाना आदि परोसते हैं, कि उस बीच कुछ क्षणों के लिए यदि सूखे या बाढ़ के, दलित उत्पीड़न या नारी उत्पीड़न के समाचार भी दिए जाते हैं, तो वे उन वर्चस्वकारी बिंबों के बीच जरा भी मानवीय संवेदना दर्शकों में पैदा नहीं कर पाते और जिन लोगों के बारे में बाढ़, सूखा, पीड़ित, उत्पीड़ित, दलित, मजदूर, स्त्री, वे सब इन्हें रंगीन पर्दे पर देखने की स्थिति में ही नहीं होते। वे तो रंगीन पर्दे के मुफ्त में इस्तेमाल होने लायक सबसे सस्ती सामग्री है, जिनकी यातनाओं को बिना उन्हें कोई फीस दिए पर्दे पर दिखाया जाता है, जबकि उन पर होने वाले अत्याचारों पर कमेंट्री करने वाले विशेषज्ञों को जेब भर कर फीसें दी जाती हैं। खैर, महाभोज का प्रस्थान बिंदु है बिशेसर या बिशु की मृत्यु, जिसकी लाश एक सुबह सरोहा गाँव में नजर आती है। बिशु की मृत्यु से महीना पहले गांव के हरिजन टोले में सामूहिक हत्याएं हो चुकी हैं, जहां झोपड़ियां आग में बदल चुकी थी और आदमी कबाब में। घटना के नाम पर तो उपन्यास में यही दो घटनाएं हैं, जो केवल उपन्यास के पहले ही पृष्ठ में बिना किसी अनावश्यक विस्तार के दर्ज कर दी गई हैं। लेकिन इन्हीं दो घटनाओं पर 150 पृष्ठ के उपन्यास का पूरा ढांचा निर्मित हुआ है। पूरे उपन्यास में ये घटनाएँ पृष्ठभूमि का ही काम करती हैं और इनकी प्रतिक्रिया में या उससे भी बदतर इन घटनाओं को कैसे सत्तासीन राजनीतिक दल सत्ता की राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं बिना किसी भी तरह की मानवीय संवेदना के, इस पर उपन्यास की संरचना आधारित है। उपन्यास में न तो उन दलित परिवारों या हरिजन टोले को किसी भी प्रकार की राहत या इसके जीवन के दुखों को कम करने की किसी कोशिश का कहीं कोई मानवीय उपाय है, जिनके घर जले या आदमी जले, और न ही विशेषर के परिवार के प्रति ही किसी की कोई संवेदना अभिव्यक्त हो पाती है, सिवाय उस शहरी शोध छात्र के जो गांव में अपने शोध के लिए आया था और जिससे बीसी रोज लड़ता था कि उनकी निरपेक्ष शोध का गांव के गरीबों दलितों को क्या लाभ। विशेषर खुद सर्जन टोले का पहला बीए स्तर तक पढ़ा लिखा बेरोजगार युवक था। विशेषर अपने भाई बंधुओं की दशा सुधारने के लिए उनमें चेतना फैलाने का प्रयास करता था, बच्चों को पढ़ाता था, जिसके लिए इमरजेंसी से पहले की सरकार उसे बिना किसी मुकदमे के 4 साल जेल में रख चुकी थी और अब उसी सत्ता से हट चुकी सरकार के नेता बिशु की मौत को राजनीतिक घटना बनाकर उपचुनाव में वोट बटोरने की तैयारी में है, और जो सरकार इस समय सत्ता में है और जिसके मुख्यमंत्री दास साहब के चहेते जमींदार ने बिशु को मरवाया है, वह श्रेय लेते हैं कि बिशु को जेल से छोड़ा तो उनकी ही सरकार ने है। असल में विशेषर या जलाए गए दलित अपने में कोई ऐसे हस्ती न थे जिनको लेकर कोई कुछ करता, जैसा कि खुद लेखिका ने अपने उपन्यास में ही दर्ज किया है। विशेषकर कोई बड़ी हस्ती नहीं, न उसका मरना ही कोई ऐसी बड़ी घटना है कि बात तुरंत पूरे शहर पहुंचे। वैसे जो चमार जलकर मर गए थे और उनके भाई बंधु जो आंसू बहानों के लिए बच गए, वे ही कौन सी बड़ी तोपें थीं। पर हंगामा तो खूब मचा है, बिशु की लाश को लेकर भी मचेगा आसार दिख रहे हैं। यह हंगामा भी न होता यदि इसी क्षेत्र में उपचुनाव न रहा होता और स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ उम्मीदवार न होते। इसके कारण गांव में शहर से अखबार नवीस, फोटोग्राफरों, मंत्रियों, अफसरों और नेताओं की गाड़ियों का तांता लग गया। शहरी बाबुओं ने अगले दिन अखबार में खबर पढ़ जरा सर की और पन्ना पलट लिया। यहीं पर उपन्यासकार व्यंग शैली अपनाती है। इस दर्दनाक हादसे से विरोधी दल के नेताओं के हृदय तपना चूर हो गए। सत्तारूढ़ दल के असंतुष्ट विधायक बिलबिलाने लगे। ऐसी अमानुषिक घटना, पार्टी के माथे पर इतना बड़ा कलंक, अब तो मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करके ही इस कलंक को धोया जा सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री को लगा कि जब तक वे असली मुजरिम का पता लगवा कर सजा नहीं दिलवा देते, उनकी यातना बोझ मुक्त नहीं होगी और पता तो सत्ता पर बैठकर ही लगाया जा सकता है। उपन्यास के पहले दो पृष्ठों में उपन्यास पूरी कथा वस्तु स्पष्ट है, जो वास्तव में देश में विकसित सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था का व्यवहार में उद्घाटन है। देश की तथाकथित आज़ादी, लोकतंत्र, दलित मजदूर, किसान आदि के हितों का पाखंड, सब कुछ महाभोज में इन घटनाओं के संदर्भ में स्वतः उद्घाटित होता चलता है। देश के मौजूदा ढांचे में जाहिर है कि हारे हुए मुख्यमंत्री इन घटनाओं के दलित विरोधी होने का ढिंढोरा पीट कर चुनाव जीतने व खोई हुई गद्दी पाने की कोशिश करेंगे। फिर ही भले ही इससे भी बड़ा दलित हत्याकांड उनकी सरकार में हो जाए, सत्तासीन मुख्यमंत्री व पार्टी दिखा देगी कैसे ये घटनाएं विरोधी दलों के साजिश हैं और वही सच्चे दलित प्रेमी हैं। अतः उनकी सत्ता बनी रहनी चाहिए, भले ही इसके लिए सत्तासीन मुख्यमंत्री को कुछ पग हरिजन बस्ती में पैदल चलकर बीसू के पिता को ढांढस बंधाना पड़े। उपचुनाव में मुख्यमंत्री दास साहब का खास सहायक उनकी पार्टी का उम्मीदवार है और विरोधी पक्ष की ओर से खुद पूर्व मुख्यमंत्री ही उम्मीदवार है। सत्तासीन पार्टी के कुछ नेता पार्टी नेतृत्व से असंतुष्ट हैं, जैसा कि हमेशा होता ही है। इस नाटक में नया कुछ नहीं है, पिछले 50 साल से यह नाटक ऐसे ही चल रहा है। पहले 20 बरस यह नाटक कुछ कम गंदे स्तर पर और कुछ प्रच्छन्न रूप से खेला जाता था। पिछले 30 बरस यह नाटक खुला खेल फर्रुखाबादी है। मरने वाले दलित भी मर गए और उनकी मौत के लिए जिम्मेदार जमींदार जोरावर, जिसे सीधे मुख्यमंत्री दास साहब का वरद हस्त प्राप्त है, जुल्मों का पर्दाफाश करने की कोशिश करने वाला बिसू भी मारा गया। जाहिर है कि बिसू को जोरावर ने मरवाया है, लेकिन उसका आतंक इतना है कि कोई इसका नाम संदेह में भी लेने को तैयार नहीं, यहां तक कि बिसू का पिता हीरा भी। केवल दो लोग हैं जो इन घटनाओं से बौखलाए हुए हैं, वह है बिसू का दोस्त बिंदा, जो गांव का जमाई है। उसकी पत्नी बिसू की स्कूल में सहपाठिनी रही है। बिंदा और रुकमा स्वयं दलित नहीं है, लेकिन उनके पक्षधर हैं। बिसू ने दलितों की हत्या के तमाम सबूत इकट्ठे कर लिए थे, जो वह दिल्ली जाकर किसी जिम्मेदार एजेंसी को देना चाहता था। इसी से उसकी हत्या करवाई गई है। अब ये सबूत बिंदा और रुकमा के पास हैं और बिंदा बौखलाए हुए राजनीतिक जलसों में मुख्यमंत्री को सीधे चुनौती देता है। और ठंडे स्वभाव वाले दास साहब जानते हैं कि ऐसे गर्म मिजाज नौजवानों से कैसे निपटना है। वे उसे भरी सभा में तो शाबाशी ही देते हैं खुलकर बोलने के लिए, लेकिन ऐसी मार मारते हैं कि इस घोर अमानवीय व्यवस्था का पूरा चरित्र उसे स्पष्ट हो जाता है। विरोधी पक्ष के दबाव और उपचुनाव के कारण वे एक अपेक्षाकृत ईमानदार पुलिस अधिकारी सक्सेना की इस मृत्यु की जांच या ड्यूटी लगा देते हैं। अपनी अपेक्षाकृत ईमानदारी के कारण सक्सेना कई तरक्कियां खो चुका है और एसपी पद पर टिक गया है। इस जांच में से पहले उसने सोचा था कि मुख्यमंत्री व उसके अपने ऊपर के अधिकारी को खुश कर अपनी रुकी तरक्की ले लेगा, लेकिन कहीं अंदर की सुई जागी उसकी जमीर और तर्क बुद्धि ने उससे फिर सच्ची रिपोर्ट दिलवा दी और बीसू की मृत्यु को उसने मुख्यमंत्री की इच्छानुसार आत्महत्या का मामला सिद्ध न कर हत्या बताई और हत्या का जिम्मेदार जोरावर के आदमी भी निश्चित कर दिए। मुख्यमंत्री की नाराजगी का उपभाजन उसे बनना पड़ा। मुअत्तली हुई उसकी, लेकिन रिपोर्ट से फिर भी शिकार खेला मुख्यमंत्री ने। जोरावर उसके हाथ से निकलकर स्वयं चुनाव लड़ने को हाथ पैर मार रहा था। सक्सेना की रिपोर्ट उसे दिखाकर मुख्यमंत्री ने उसके उगते पैरों को काट दिया। मुख्यमंत्री के चहेते पुलिस अधिकारी ने रिपोर्ट बदली और बीसू की हत्या के लिए बिंदा को दोषी ठहराया, क्योंकि बीसू उसकी पत्नी का पूर्व प्रेमी था। पुलिस अधिकारी जो कई वरिष्ठों को पार कर पुलिस प्रदेश पुलिस का मुखिया पद मिला। उधर आईजी के घर व पूर्व मुख्यमंत्री के घर चुनाव जीतने की संभावनाओं के चलते महाभोज उड़ रहे हैं। बिंदा पुलिस यातनाएं झेलने के लिए बंद है और सक्सेना ने जागे हुए जमीर के साथ रुकमा को लेकर दिल्ली रवाना हो गया है, बिसु की मौत के प्रमाणों की फाइल लेकर। उपन्यास में यद्यपि व्यवस्था के अमानवीय पक्षों का हर स्तर पर उद्घाटन हुआ है, लेकिन कहीं कहीं व्यवस्था के भीतर के बचे हुए मानवीय अंशों को लेखिका ने उपेक्षित न कर उपन्यास को सनकीपन के तल तक उतरने से बचा लिया है। ज्यादातर लेखक व्यवस्था के अमानवीयपन को उगाड़ते हुए यथार्थ का ऐसा क्रूर हृदयहीन चित्र प्रस्तुत करते हैं कि लगता है जैसे मानवीय भावनाओं का समूल नाश हो गया और कहीं किसी प्रकार का प्रतिरोध या परिवर्तन संभव नहीं है। लेकिन बावजूद इतनी आतंकित करने वाली परिस्थितियों के अभी बिंदा जैसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री की जनसभा में चिल्लाकर यह कहने का साहस दिखाते हैं, कौन देगा गवाही, मरना है किसी को शिनाख्त करके, 4 दिन यहाँ रहकर देख लीजिए, पता चल जाएगा कैसा आतंक है। यही बिंदा पुलिस के तमाम यातनाओं को लेकर भी टूटता नहीं है और पुलिस के मार झेलता हुआ चीखता है, मार डालो, तुमने बिसु को मार डाला, मुझे भी मार डालो, लेकिन देखना बिसु की इच्छा को कोई नहीं मार सकता। यह बिसु की इच्छा ही है जो यातनाएं झेलकर भी बिंदा के अंतर्मन में उसकी अंतरात्मा में गहराई तक बसी है और यह बिसु की इच्छा ही है जो सक्सेना जैसे ईमानदार पुलिस अधिकारी की अंतरात्मा को भेज देती है जो बिसु की हत्या के प्रमाण लेकर दिल्ली रवाना हो जाता है। बिसु की इच्छा कुछ खास नहीं है, बस इतनी ही कि दलितों गरीबों को भी इंसान समझा जाए, उनसे पशुओं जैसा व पशुओं से भी बदतर व्यवहार न किया जाए जैसा कि व्यवस्था के वर्चस्ववादी ताकतें बड़े जमींदार करते हैं। उन्हें उनका सम्मान से जीने का, मेहनत मजदूरी के वाजिब मेहनताने का संवैधानिक हक दिया जाए। बिसु को नक्सली कहकर जेल में बंद किया गया था, लेकिन शहर का छात्र महेश बताता है कि वह तो नक्सलियों का आलोचक था, वह तो हिंसा के पथ का समर्थक नहीं था, वह तो जन प्रतिरोध का समर्थक था, कानूनी रूप से निश्चित मजदूरी के हक के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष का पक्षधर था। लेकिन यदि व्यवस्था अपने ही बनाए नियम कानूनों के समर्थक की रक्षा नहीं करेगी तो जाहिर है कि ऐसी शक्तियां जन्म लेंगी जो बिसु के शांतिपूर्ण संघर्ष से आगे जाकर आत्मरक्षा के लिए हथियार भी उठाएंगी। आज बिहार में जो हो रहा है, एक और बड़े जमींदारों द्वारा पालित पोषित रणवीर सेना यदि गरीब दलितों का नरसंहार करती है तो दलितों ने भी आत्मरक्षा में हथियार उठा लिए हैं। व्यवस्था दोनों पक्ष के संघर्ष का तमाशा देखती है और जहाँ रणवीर सेना कमजोर पड़ती दिखती है सीधे उसकी मदद पर उतर आती है और दलितों को पुलिस उत्पीड़न का भी शिकार बनाती है। उपन्यास में कहीं कहीं हल्के ढंग से सामाजिक वास्तविकताओं की ओर संकेत किया गया है। हमने तो सबको देख लिया साहब, वह एक शराबी सरकार थी, एक पिशाबी सरकार, ससुरे सब ऐसे ऐसे। यह बात बिंदा पुलिस अधिकारी सक्सेना से कहता है जब वह उससे बिसु की मौत संबंधी पूछताछ कर रहे हैं, चूंकि बिसु का आग्रह था कि राज्य सरकार दलितों के हत्यारों को प्रश्रय दे रही है इसीलिए दिल्ली चलकर घरों में आग लगाने के प्रमाणों को जगजाहिर किया जाए। इसी संदर्भ में बिंदा दोनों सरकारों को एक से ठहराते हुए पिशाबी सरकार कहकर जनसाधारण में मुरारजी देसाई की जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार की छवि का संकेत देता है। उपन्यास में मशाल पत्रिका के संपादक को मुख्यमंत्री दास साहब के खरीदने से मशाल पत्रिका के रंग बदलने के प्रसंग द्वारा व्यवस्था के भीतर पत्रकारिता की ईमानदारी के प्रश्न को भी उभारा गया है। आज तो स्थिति और भी बदतर है। किस तरह से पत्रकारिता को इस व्यवस्था में झूठी खबरें बना बनाकर सच्ची खबरें दबाकर यथार्थ को विकृत रूप में प्रस्तुत कर पत्रकारिता के पूरे पेशे की प्रतिष्ठा पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है। मशाल प्रसंग तो उसका बहुत छोटा सा नमूना है। पहले यह माना जाता था कि देश के छोटे शहरों में छपने वाले अखबारों में पीत पत्रकारिता के चलते ब्लैकमेल करने वाली खबरें छपती हैं। वह तथाकथित बड़े अखबारों का भेद मिट गया है और टेलीविजन या अखबार में हर तरह से खबरों को विकृत करके विरूपीकृत रूप में पेश करना आम बात हो गई है। 1979 में रचा महाभोज वास्तव में 2000 के आसपास की पूर्व छाया है। मुक्तिबोध ने जब अपनी बहुचर्चित लंबी कविता अंधेरे में की रचना की थी उस समय अंधेरे में चित्रित यथार्थ की कल्पना भी असंभव लगती थी और उसे अपेक्षित गंभीरता से लिया भी नहीं गया, लेकिन मुक्तिबोध की कविता सच्ची सिद्ध हुई और भारतीय समाज ने इस कविता के रचे जाने के 1.5 दशक के भीतर ही अंधेरे में चित्रित परिस्थितियों को अपने बदन पर झेला। एक सच्चे लेखक का महत्व इसी बात में ज़्यादा है कि जनसामान्य से लगाव रखते हुए भी पूरी वस्तुगतता से अपने समकालीन समाज को अपनी कल्पना में ग्रहण करते हुए उसकी सृजनात्मक अभिव्यक्ति में वह भविष्य दृष्टा सिद्ध हो सकता है, जैसे मुक्तिबोध हुए। महाभोज उपन्यास भी एक स्तर पर मुक्तिबोध के ही अंधेरे में कविता का औपन्यासिक विस्तार है। आज हम जिन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों में जी रहे हैं, देश में दलित प्रश्न जिस प्रकार अब किनारों से केंद्र की ओर आगे बढ़ रहा है, वह विश्व की दुर्दमनीय इच्छा के विस्तार का ही प्रतीक है। लेखिका का महाभोज का समर्पण वाक्य 25 वर्ष बाद अपनी प्रामाणिकता सिद्ध कर रहा है, और कि बीसु और बिंदा के भीतर लपकती अग्नि लीक का सम्मोहन बहुत खतरनाक है, और बीसु और बिंदा तक रुका भी नहीं रहता। उपन्यास लेखिका मन्नू भंडारी को इस बात का महत्व श्रेय है कि उसने महाभोज उपन्यास की रचना पर शहरी शोध छात्र की निरपेक्षता का नहीं, बीसु बिंदा के हमसफर होने का परिचय दिया है। उनकी सशक्त कलम से आज की बदतर हो गई परिस्थितियों पर भी एक और प्रभावशाली उपन्यास की अपेक्षा है।